कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारिया। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। पुकारो प्रेम से पुकारो। हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Yashoda Nanda Jaya Krishna Balaram. Jaya Yashoda Nanda Jaya Krishna Balaram Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Nanda Gamadham Nanda Gamadham Nandagam Dham, Jai Nandagam Dham. Itai Gaura Premanande, Hari Hari Bol, Jai Jai Sri Radhe Shyam. Bolo, Jai Jai Sri Radhe Shyam Gopal Gopal Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Pukaro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Aaj bhi puchunga Shinandagaon dham ki श्री वृंदावन धाम की श्री यशोदा रानी नंद महाराज श्री कृष्ण बलराम की श्री धन सुखा मन सुखा की श्री धामा मधुमंगल की श्री राधा रानी की श्री पावन सरोवर धाम की तो आज के इस पवित्र एकादशी के पर्व पर 11 फरवरी को 2018 को आप सबका पावन सरोवर में स्वागत है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पावन सरोवर ये भगवान के साक्ष्य रस की लीलाओं का नंबर 2 के पसंद का स्थान है। नंबर 1 का पसंद का स्थान जो है वो ग्वाल पोखरा है जो गोवर्धन में है और ये नंबर 2 का उनका पसंदीदा स्थान है। यहाँ पर वो अपने गायों को लेकर आते हैं, पानी पिलाते हैं, विश्राम करते हैं, खुद पानी पीते हैं, खुद स्नान करते हैं और बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं। श्री वृंदावन धाम जो पौराणिक स्वरूप है वो वृंदावन यमुना गोवर्धन नंदगांव बरसाना और जावट ये सब के साथ मिला हुआ है। ये सब मिलकर वृंदावन जो 12 वनों में जो वृंदावन है ना वो बनता है। जब हम वृंदावन धाम कहते हैं मतलब पूरा ब्रजमंडल को वृंदावन धाम भी कह सकते हैं, और वृंदावन 12 वनों में से भी एक वन है, 12 वनों में सर्वश्रेष्ठ वन वृंदावन है, तो वो भी भगवान को प्रिय है सबसे 12 वनों में अधिक। और वो वन जो है वो 20 कोस का है, जिसमें वृंदावन आज का यमुनापुरी, पूरा गोवर्धन, नंदगांव बरसाना और जावट। किसी को पता है जावट क्या होता है? राधा रानी का ससुराल। राधा रानी की शादी अभिमन्यु गोप से हुई और अभिमन्यु गोप जावट में रहते थे, जावट, तो उसको जावट कहते हैं, लेकिन जावट, जाव का मतलब होता है जावक, जावक का मतलब होता है जो स्त्रियां अपने पैरों पर करते ना डेकोरेशन, आलता कहते हैं उसको, जो लाल रंग का यूपी में करते ना उसको जावक कहते हैं, महावर भी कहते हैं उसको। तो उससे राधा रानी के पैरों का श्रृंगार होता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने जावट में, जाववट यानी बरगद के एक पेड़ के नीचे राधा रानी के पैर को अपने हाथ से महावर का श्रृंगार किया था, इसलिए उसको जाववट कहते हैं उस पूरे गांव को। तो वो यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर राधा रानी की सासू जी जटिला और नंदी जी कुटिला दोनों निवास करते हैं, पति देव भी निवास करते हैं, अभिमन्यु देव, अभिमन्यु गोप। बहुत चटपटी लीलाएं वहाँ पर होती है। वहाँ पर एक किशोरी कुंड भी है, वहाँ पर राधा रानी ने कंस को डांट कर स्नान कराया था और कंसनी गोपी जो कंस स्त्री बन गए थे, वहाँ पर स्नान करने के बाद में वो दोबारा पुरुष बन गए और वहाँ से जो भागे मथुरा तक वापस लौट के नहीं आए कभी। तो राधा रानी के महाप्रताप से जाववट, नंदगांव, परसाना, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम मतलब परसाना, नंदगांव, जावट, इस 3 इलाके में कोई राक्षस ने प्रवेश नहीं किया राधा रानी के भय से, महाप्रताप से, ऐसे गर्ग संहिता में वर्णन आता है। तो अभी हम पावन सरोवर किनारे बैठे हैं, नंदगांव में पावन सरोवर आता है। ये नंदगांव जो है वो वात्सल्य भाव और सखा भाव, साक्ष्य लीला, इसका प्रधान स्थान है। सब लीलाएं सब जगह होती हैं, लेकिन फिर भी नंदगांव में भगवान के सखा रहते हैं। भगवान यहाँ से ही गोचारण शुरू करते हैं और माता यशोदा, पिता नंद महाराज और उपनंद बाबा, उनकी पत्नी प्रभादेवी, प्रभावती, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े गोपों की पत्नियाँ जो भगवान से वात्सल्य प्रेम करती हैं, तो बहुत फ्रेंड्स भगवान के, भगवान से दोस्ती करते हैं, साक्ष्य, उसका ये प्रधान स्थान है। ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने इतना उधम मचाया, आज भी वो भाव जो है ना उधम मचाने का, वो यहाँ के जवान बालकों में होता है। और कहते हैं कि साधु अगर कोई नंदगांव में आकर ठीक से भजन कर पाया, मतलब वो एग्ज़ाम में पास हो गया, इन बालकों के आतंक में, छेड़छाड़ में, हंसी मजाक में, हाँ, अगर वो टिक पाया और भजन कर पाया तो ये लोग फिर उनको मानते हैं कि हाँ भाई आप सच्चे साधु हो। क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी क्या किया पता है ना आपको, तो नदी में साधु स्नान करते रहते थे तो उनको जाके पाँव खींचते थे, उनका मुंह में पिचकारी मारते थे, कभी वस्त्र चुराते थे, चैतन्य महाप्रभु ने यही किया। तो ऐसे प्रकार से सखा लोग और कृष्ण बलराम जो है वो यहाँ के बाबाओं को भी तंग करते थे, तो इसलिए बहुत विशेष चटपटी जगह है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान एकदम खुलकर बालक बनते हैं, यहाँ पर उनको कोई ऐसा बंधन नहीं है, कौन देवता देखेगा मुझे, कोई ब्रह्मा देखेगा, ऐसा कोई परेशानी नहीं है उनको, एकदम खुलकर अपने बाल भाव को प्रकट करते हैं और सखाओं को भी आनंद देते हैं, नंद बाबा को भी आनंद देते हैं, यशोदा माई को भी आनंद देते हैं। पर उनका उधर नंद भवन है, हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ का जो भाव है ना वो बहुत श्रेष्ठ है और यशोदा माई यहाँ निवास करती है नंद बाबा के साथ और अपने बालक को लालन पालन करती हैं, प्रेम से दुग्ध पान कराती है, स्तन पान कराती हैं, गायों की सेवा करती है, कृष्ण भगवान के लिए मीठी मीठी सुंदर सुंदर मिठाई बनाती हैं। ऐसे बहुत प्रेम का रिश्ता है यहाँ पर। एक मुनि है जो कहते हैं कि मैं इस विश्व में किसी भगवान को नहीं पूछता, मैं केवल नंद महाराज को पूछता हूँ, क्योंकि नंद महाराज यशोदा देवी इतने महान हैं, इतने महान हैं कि परात्पर भगवान जो है गोलोकेश्वर, वो भी अपना गोलोक का पद छोड़कर यहाँ पर बालक बनकर इनके आंगन में रेंग रहे हैं, क्रॉलिंग एट द कोर्टयार्ड ऑफ नंद महाराज। इनको खुशी देने के लिए, इनको रिझाने के लिए, इनके भाव को प्रतिसाद देने के लिए गोलोक का ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ पर नंदगांव में आते हैं, उनके गोद में जन्म लेते हैं, उनके गोद में खेलते हैं, उनके आंगन में रेंगते हैं, उनकी गौशाला में लुटपुट हो जाते हैं। कितना आनंद देते हैं आप सोच सकते हो? एक काला कलूटा कुरूप बच्चा भी होगा ना किसी का, तो जब वो बालक होता है ना तो भी अच्छा लगता है बहुत। वो उसकी हरकतें, उसकी मीठी मीठी तोतले तोतले बोल, उसका चलना झुलना, उसका जो भी उनकी माताएं वर्णन करती ना, अभी ऐसा किया, अभी वैसा किया, अभी ये करता है, अभी वो करता है, वो उसकी इतनी आकर्षक होती है बालक की, अगर कुरूप बालक भी होगा तो भी। तो फिर जो सर्वो सुंदर बालक है भगवान, वो जब बालक बनकर आते तो कितने सुंदर होंगे वो, और कितनी मधुर उनकी लीलाएं होंगी, कितने आकर्षक होंगी, है ना। तो ये इतना परम आनंद जो है ना, जो भगवान ने यहाँ पर दिया अपने माता पिता को और बड़े बड़े गोपों को, वात्सल्य भाव से भर दिया, यहाँ तक कि सारी गोपियाँ बड़े जो थी वो हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करती थी। कौन से भगवान से प्रार्थना करती थी वो, तो आप सोचते भी जाओ जब सुन रहे हो। हाँ, अरे साक्षात परम भगवान तो उनके घर में बालक बन के आए हैं और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। कौन से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? नरसिंह भगवान, विष्णु भगवान, अधोक्षज विष्णु, हाँ क्षीरोदकशायी विष्णु, ऐसे विष्णुओं को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं उनके लिए? कि ये जो बालक है वो हमारा बेटा बन जाए। ईर्ष्या से नहीं, यशोदा से द्वेष करते हुए नहीं कि इसको क्यों, मुझे क्यों नहीं, ऐसे नहीं। अपने बालक से भी कृष्ण पर अधिक प्रेम करते थे, यशोदा को इतना सम्मान करते थे कि आप वास्तव में बड़ी महान भक्त हैं भगवान, कि आपको ऐसा सुंदर बालक भगवान ने दिया। लेकिन सबके मन में ऐसा हुआ करता था कि हम भी भगवान को स्तनपान कराएं, हम भी उनको बालक के रूप में उनकी सेवा करें। तो इसलिए भगवान ने जब ब्रह्मा सम्मोहन लीला किया ना, जब ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़े चुरवाए गए और ग्वाल बाल भी चोरी हो गए, तो वो एक साल जो है यहाँ पर भगवान ने सारे गोपों का रूप धारण किया, सारे ग्वाल भगवान बने, सारे बछड़े भी भगवान बने, क्योंकि गायों को भी इच्छा थी बहुत कि कृष्ण को स्तनपान किया जाए। हर गाय को इच्छा थी कि मैं कृष्ण को स्तनपान कराऊँ। अभी वो माता दूध निकाल रही है, फिर उसका कुछ बनाया जा रहा है, फिर वो कृष्ण खा रहे हैं, लेकिन अगर मुँह में लग जाए तो कितना अच्छा लगे। यहाँ के बच्चे जो होते ना सीधे गाय के आंचल में मुंह लगाते हैं, कितने बच्चों को मैंने देखा है, दो पैर के पीछे से जाते हैं और सीधा दूध पीते हैं, और गाय भी आराम से उनको प्रेम से पिलाती है। मैंने गोवर्धन में फोटो निकाले हैं ऐसे बहुत सारे, दो पैर के बीच में एक 4 साल का बच्चा खड़ा है, उसका हाइट एकदम गाय के थन के बराबर है, वहाँ पर मुँह करके पूरा दूध पी रहा है प्रेम से। तो सभी गायों को भी इच्छा थी, सब माताओं को भी इच्छा थी। जब ब्रह्मा ने सब बालक चुरा दिए और बछड़े भी चुराए, तो भगवान ने सारे गोपों का और बालकों का और बछड़ों का रूप धारण किया, और उस दिन ऐसे ही घर लौटे जैसे रोज लौटते हैं। जब लौट के आए तो कृष्ण बलराम अपने घर पे गए और सारे ग्वाल बाल जो स्वयं कृष्ण हैं वो अपने अपने घर चले गए, सारे बछड़े जो थे अपने अपने गौशाला में चले गए, और एक साल उन्होंने बछड़े बनकर सभी गायों का दूध पिया, एक साल ग्वाल बाल बनकर सभी माताओं का थन पिया। कितना आनंद दिया उन्होंने, और सबको आश्चर्य हो रहा है कि इतना आनंद क्यों हो रहा है, वही बालक है हमारे, लेकिन बार बार सर चूम रहे हैं, बार बार आलिंगन दे रहे हैं, बार बार गले लगा रहे हैं, बार बार दूध पिला रहे हैं, ऐसा आनंद उनको प्राप्त हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि एक रहस्य था ना, वो किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि बलराम जी को पता नहीं था, तो बलराम जी वहाँ उस दिन नहीं गए थे। तो आगे जाकर बलराम जी भी एक दिन आश्चर्य करते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि बड़े गोप बड़े गायों को लेकर गोवर्धन में गाय चरा रहे थे, और श्री कृष्ण भगवान बछड़ों को लेकर और ग्वाल बालों को लेकर अपना वत्सपाल लीला कर रहे थे। तो एक समय ऐसा आता है कि बड़ी गायें जो हैं वो अपनी छोटी गायों को बच्चों को देखते हैं ऊपर से, और वो सब कृष्ण थे ना, तो ऐसा आकर्षण पैदा हुआ कि वो ऐसे भागे नीचे। अभी आपकी गाय अगर पहाड़ से नीचे उतर भागती हुई निकलेगी तो आपको कितना डर लगेगा, अरे गिर जाएगी, उल्टी सुलटी हो जाएगी तो कितना कष्ट होगा। लेकिन सारी गाय एकदम स्पीड में भाग रहे हैं अपने बछड़ों की ओर, उनको चाटने के लिए, उनको दूध पिलाने के लिए। तब बलराम जी देख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब बलराम जी का जन्मदिन था उस दिन ये लीला हुई, अकेले कृष्ण बालकों को लेकर गए थे और वहाँ चुराए ले गए सब बालक, और लौट के आए तो बलराम जी घर पे ही थे, और एक साल लीला चलती रही। जब ये गायों को भागते हुए देखा तो बलराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना प्रेम मैंने कभी गायों के मन में बालकों के प्रति बछड़ों के प्रति देखा नहीं। तो वो बाजू में लेकर कृष्ण को कान में पूछते हैं कि ये क्या है, तो संक्षेप में उनको कान में समझा देते हैं कि क्या है। ऐसा भगवान ने सभी लोगों को आनंद दिया, और साथ साथ भगवान ने उस साल के अंदर बाबा को भी बताया कि बाबा ये सभी गोपियों का विवाह करने के लिए अच्छा मौसम है, सब तारे अपने अपने जगह पर शुभ लक्षण शुभ योग बनाकर बैठे हुए हैं, तो सारी गोपियों की शादी सारे गोपों से कर दो, क्योंकि केवल माताएं और गायें इच्छा नहीं कर रहे हैं, यंग लड़कियां गोपियां जो है वो सोच रही है कि कृष्ण हमारे पति बन जाएं। तो भगवान को ये भी याद है, सबकी इच्छा पूरी करते थे, बोलते ना ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाते ना कि सब एक ही मास्टर स्ट्रोक में सबकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं अनंत कोटि लोगों की। तो नंद बाबा भी तुरंत तैयार हो जाते हैं, पूर्णमासी भी तैयार हो जाती है, सब लोग मुहूर्त निकालते हैं, और सभी गोपों का सभी गोपियों के साथ विवाह हो जाता है। मतलब किसके साथ होता है, हाँ सभी ग्वाल बाल कृष्ण ही थे, और सबका विवाह गोपियों का उन ग्वाल बालों से हुआ। उसमें अभिमन्यु का विवाह जो है वो राधा रानी के साथ हुआ। तो वो जो अभिमन्यु है वो जावट के हैं। तो एक साल भगवान जावट में अभिमन्यु के रूप में रहे और राधा रानी के संग किया उन्होंने, और एक साल सभी गोपियों को पति बनने का उन्होंने आनंद दिया, जो उनकी इच्छा थी श्रृंगार रस की वो भगवान ने प्राइवेट में पूर्ति की। वैसे तो पूर्ति करना पर के भाव में मुमकिन नहीं था, तो ये रूप धारण करके उन्होंने सभी गोपियों से विवाह किया, सभी बड़े गोपियों के बालक बने और सभी गायों के बछड़े बने, और सबको निकट का व्यक्तिगत आनंद दिया, 1-to-1। कहते हैं कि भगवान को ब्रजभूमि से इतना प्रेम है कि भगवान ने एक साल में बछड़े बनकर हर जगह रज का पान किया है, क्योंकि बछड़ा घास खाता है, घास में ब्रज रज होती है, तो ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई अणुमात्र जगह नहीं है ब्रज में जहां पर भगवान ने स्वयं जाकर वहां का रज पान नहीं किया है, सब जगह जाकर भगवान ने रजपान किया है। और फिर जब भी भगवान लौट कर आए, मतलब ब्रह्मा जी को भ्रम नष्ट हो गया, ब्रह्मा जी ने बालक लौटा दिए, तो उस समय जब भी असली ग्वाल बाल लौट के आए ना, तो अभी तो असली ग्वाल बाल सब गोपियों के पति है ना वो, लेकिन लिखा है शास्त्र में कि किसी भी गोप ने किसी भी गोपी के साथ में वो संबंध नहीं किया जो पति पत्नी करते हैं, वो भगवान के सेवक के भाव में रहे और कभी उन पत्नियों का पत्नी के रूप में उन्होंने भोग नहीं लिया। अभिमन्यु का भी ये रोल है, जब वास्तविक अभिमन्यु लौट के आए तो केवल भगवान की चटपटी लीलाओं को वृद्धि करने के लिए वो लीला करते रहे, वो पकड़ना जाके डांटना, कहाँ गई थी, कभी उनसे मिल रही थी क्या, पीछा करना उनसे, माता और बहन के आदेश के अनुसार जाके गुप्त हेरगिरी करना उनके पीछे और भागना, ये सब जो कृष्ण और राधा रानी के परकीय भाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने सहायता किया बस, लेकिन वो काम नहीं किया जो पति पत्नी करते हैं। बड़ा विशेष भाव है ब्रज का यहाँ पर, पति तो बने हुए हैं गोप, लेकिन वो सभी गोपियों को अपने पत्नियों को कृष्ण की प्रॉपर्टी के रूप में मानते हैं, इसलिए हमें भी हमारी पत्नियों को भगवान की प्रॉपर्टी के रूप में देखना चाहिए, हमारी भोग्य वस्तु इस रूप में नहीं देखना चाहिए। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक वैष्णव के रूप में देखना चाहिए और उनके साथ वैष्णव वैष्णव के रूप में संग करना चाहिए कि घर में संग प्राप्त हो रहे हैं। एक हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के एक ब्रह्मचारी शिष्य थे, तो वो विवाह करने में निर्णय लिया उन्होंने कि मैं विवाह करूँगा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूँगा। तो बाकी आश्रम के जितने भी ब्रह्मचारी लोग थे वो महाराज के पास कंप्लेंट करने गए, महाराज जी ये ब्रह्मचारी देखो अभी विवाह करने जा रहा है, इसको रोको, इसको समझाओ। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज है ना, तो विरक्ति के महान प्रतीक थे वो। क्या बोलते हैं उसको, क्या श्लोक है उनका, नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर असाम बोधे पादाम बुझायन पादाम बुझाया ते नमः। एक तो वैराग्य की मूर्ति थे वो स्वयं, और विप्रलंब भाव में कृष्ण के विरह के भाव में इतने परमोच्च कोटि पर पहुंच गए थे। ऐसे होने पर भी वो क्या कहते हैं बाकी ब्रह्मचारियों को, अरे उनको तो 24 घंटा अभी संग प्राप्त होगा घर में, क्योंकि उसकी पत्नी होने वाली वैष्णवी है, 24 घंटा भगवान ने उनको भक्त के संग का व्यवस्था कर दिया है, आप क्यों उनको डांटते हो और क्यों कोसते हो, क्यों टीका करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जो लोग भाग्यवान हैं उनको वैष्णव पत्नी प्राप्त होती है, वैष्णव पति प्राप्त होते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने मेरे माया से बचने के लिए 24 घंटा संग का इंतजाम किया है, ये भाव होना चाहिए। लेकिन हम अक्सर अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में देखते हैं और पति अपने पति को पति के रूप में देखते हैं, फिर वही दुनियादारी का भाव बना रहता है उसके अंदर। लेकिन उसके ऊपर उठकर हमको सत्संग के भाव में रहना चाहिए, तब हमारी गृहस्थी जो है वो सफल है। उस गृहस्थी में भगवान निवास करते हैं, उस गृहस्थी के माध्यम से भगवान प्राप्त हो जाते हैं और संतान भी भगवान की भक्त पैदा होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नंदगांव नंद सरोवर, ये जो सरोवर है पावन सरोवर, इसका नाम पहले नंद सरोवर था, ये नंद बाबा का निजी प्राइवेट सरोवर है। यहाँ पर नंद बाबा रोज स्नान करते थे। और ये जो आपको दिख रहा है ना, वो देखो वहाँ पर एक कुआं है सफ़ेद रंग का, दिखता है आपको, एक कुआं है ना सफ़ेद, वो यशोदा घाट है, जो वाइट सीढ़ियाँ बनी ना, घाट बना है वाइट, उसके आगे गोल है वो कुआं है, वो यशोदा घाट है, और उसमें यशोदा देवी ने एक कुआं बनाया है मीठे पानी का। वहाँ पर राधा रानी हर दिन आकर नंदगांव आकर कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाती थी, वो घाट है वो, और यशोदा देवी भी वहाँ पर स्नान करती थी रोज, और इस घाट पर कहीं भी सरोवर में नंद बाबा स्नान करते थे। तो एक दिन घर में मटरी बनाई जा रही थी, जानते हैं मटरी क्या होती, मटरी नहीं मालूम, कोई यूपी का नहीं, इसमें मटरी यानी वो एक सूखा आइटम होता है, नमकीन आइटम होता है, वो सफ़र में यूज़ करते हैं उसको, सफ़र जब यात्रा करने का समय आता है ना तो उसको बनाते हैं मटरी, उसमें फिर कभी अजवाइन गिरता है, कभी जीरा गिरता है, कभी बहुत सारा अच्छा अच्छा सामान, और बहुत दिन बचता है तो सफ़र में काम आता है। तो एक दिन घर में मैया यशोदा माई मटरी बना रही है, तो बालक कृष्ण आकर पूछ रहे हैं, मैया क्या बना रही हो, ये तो आइटम मैंने कभी देखा नहीं। बोले बेटा ये इसको मटरी कहते हैं। बोले मटरी क्यों बना रही हो। बोले बाबा, नंद बाबा और बड़े ग्वाल बाल जो हैं वो सब अभी त्रिवेणी संगम स्नान करने जा रहे हैं। तो ये सुनते ही कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, मतलब ब्रज से बाहर जाने की बात कृष्ण को अच्छी लगती नहीं है। तो कहते क्यों जा रहे हैं वहाँ पर। तो बेटा वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीन नदी का संगम है, और वहाँ पर वो संगम में स्नान करने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, तो सब ग्वाल बालों ने योजना बनाई है, ग्वाल बड़े ग्वालों ने, तो वो जा रहे हैं। तो फिर वो कन्हैया जी बाबा के पास गए, बाबा आप क्यों जा रहे हो। तो बोले ऐसे ऐसे उनको समझाते हैं, फिर नहीं आप ऐसे करो, आज ना द्वितीया है, वैशाख महीने की द्वितीया है, कल अक्षय तृतीया है, कल आप निकलेंगे तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी, आज के रात में आप विश्राम यही कीजिए, आज का जाना वो कल तक पोस्टपोन कर दीजिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज का कल कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रात को नंदगांव में रुक गए वो, उस दिन जाने वाले थे लेकिन उसी दिन वहीं पर रुक गए, रात का विश्राम वहीं किया, और हर रोज की तरह, क्योंकि रुबे सुबह 4 बजे के पहले ब्रह्मा मुहूर्त में वो यहाँ पर आके स्नान करते थे रोज, तो हर रोज की तरह आ गए और स्नान करने आए तो क्या देखा कि सुबह के समय अंधेरा होना चाहिए तो बहुत बड़ा प्रकाश फैला हुआ है। तो प्रकाश की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत लंबा चौड़ा राजा जो है ना, राज वस्त्र पहनकर, मुकुट पहनकर, अलंकार पहनकर, मालाएं पहनकर नंद सरोवर में स्नान कर रहा है। तो ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन सोच रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति को मैंने कभी देखा नहीं आज तक, पहली बार देख रहा हूं। क्योंकि राजा होने के नाते प्रजा के हर एक व्यक्ति को वो जानते थे, हर एक गाय को पहचानते थे, हर एक बछड़े को जानते थे। राजा का यही एक श्रेष्ठ गुण है। तो ये तो प्रजा हमारी, ये व्यक्ति नंदगांव का तो नहीं हो सकता, ये बाहर से आया हुआ, इसको मैं जानता नहीं हूं। और एक आश्चर्यमय चीज वो राजा कर रहे थे, वो ये थी कि वो नंद सरोवर में स्नान कर रहे थे, नंद सरोवर में स्नान कर रहे थे और स्नान करने के बाद में फिर किनारे में आकर धूल में लोट पोट होते थे और फिर कुंड में स्नान कर रहे हैं और फिर रज में लोटपोट हो रहे हैं और फिर कुंड में स्नान कर रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम तो स्नान करके चले जाते हैं, ये तो मट्टी में लोटपोट क्यों हो रहे। तो जाके धीरे धीरे बाबा, वो जो महाराज है, उनके पास जाते हैं, पूछते महाराज जी आप कौन हो, कभी देखा नहीं नंदगांव में आपको। तो वो कहते मैं प्रयागराज हूं, स्वयं त्रिवेणी संगम हूं। अच्छा, तो दंडवत प्रणाम किया तुरंत, जहां जाने का प्लान था वो धाम व्यक्ति यहीं पर आ गए। तो दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज बहुत धन्यवाद है आपका, आप हमारे धाम में आए, लेकिन आप जो कर रहे हो कुछ समझ में नहीं आया मुझे, स्नान भी कर रहे हो, मट्टी में लोटपोट भी हो रहे हो, ये क्या बात है। वो कहते हैं ये रज जो है ना, इस रज के अंदर इतना शक्ति है कि अनंत पापों को नष्ट करके श्री कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम और भगवान परम भगवान के प्रति प्रेम देती है वो, इसलिए हम इस जल में स्नान कर रहे हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए और इस रज में लोटपोट हो रहे हैं, क्योंकि साल भर हमारे अंदर दुनिया भर के पापी पुण्यवान लोग आके स्नान करते हैं, अपना पाप छोड़ के जाते हैं, तो हम बहुत अपवित्र हो जाते हैं, हमारा तेज नष्ट हो जाता है। तब हम यहाँ पर अक्षय तृतीया के साल में एक दिन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं, रज में लोटपोट होते हैं तो पुनः हमारा तेज प्राप्त करते हैं, पवित्रता प्राप्त करते हैं, भक्ति प्राप्त करते हैं, फिर हमारी सेवा करने के लिए 359 दिन अपनी जगह पर जाकर बैठते हैं, फिर दुनिया भर के लोग आकर फिर स्नान करते हैं, फिर अक्षय तृतीया में हम फिर आते हैं यहाँ पर। तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ सुनकर, अरे मेरे सरोवर में। तो जब बात कर रहे हैं तो उनका नज़र जो है ना वो उल्टे किनारे में पहुँचती है, इससे हम जो वहाँ पर है तो यहाँ किनारे पहुँचती है। तो यहाँ पर तो अनंत देवियाँ तेज वाली स्नान कर रही है, वही कर रही है जो वो कर रहे हैं। तो हल्ली धीरे धीरे उसके द्वारा आते हैं, देवियों आप कौन हो। तो देवियां कहती है मैम गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, सिंधु है और सरयू है, और सबका अपना नाम देती है। दुनिया भर की पवित्र नदियां देवी बनकर यहाँ पर स्नान कर रही है, वही रज में लोटपोट हो रही है, वही भी ये बताती है कि हमारे अंदर भी दुनिया भर के लोग आके स्नान करते हैं, तो हम भी इस दिन आकर यहाँ पर अपने आप को पावन कर देते हैं। उस दिन से इसका नाम पड़ा पावन सरोवर, सबको पावन करने वाला है, देवी देवताओं से लेकर इंद्र गोप नाम के कीटक तक सबको ये पावन कर सकता है। इसका स्पर्श होने से, इसका दर्शन होने से, इसका आचमन होने से, इसका स्नान होने से परम भगवान की बड़ी कृपा प्राप्त होती है और सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पुण्य भी धुल जाते हैं और श्री कृष्ण के प्रति, चरणों के प्रति अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा ये पावन सरोवर है। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु भी आए हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु ने इसमें स्नान किया है। तो ये सभी नदियों का चरणामृत है ही, नंद बाबा यशोदा माता का चरणामृत है ही और श्री कृष्ण भगवान का भी चरणामृत है और साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का भी चरणामृत है। जब काम्यवन से चैतन्य महाप्रभु आए थे ब्रज में, मतलब मथुरा से काम्यवन, काम्यवन से नंदगांव आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने स्नान किया था और झूम झूम कर कीर्तन किया था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर यहाँ से महाप्रभु चैतन्य ऊपर गए थे पहाड़ पर, पूछते पूछते कि कोई यहाँ पर छोटे लाला और एक माता पिता की मूर्ति है क्या। तो कुछ लोगों को पता नहीं था, लेकिन कुछ लोग बुजुर्ग थे, वो बताया कि ये पहाड़ के अंदर नंदीश्वर के अंदर एक गुफा है, उसके अंदर एक माता और बेटे का मूर्ति है। तो भाग कर पहाड़ पर गए वो, और वो गुफा में प्रवेश किया उन्होंने। तो लोग भी उनका तेज स्वर्ण कांति और तेज और भाव देखकर लोग भी उनके पीछे पीछे भागे और फिर रुक गए। फिर ये महाप्रभु चैतन्य गुफा में प्रवेश किए और गुफा में प्रवेश करने के बाद में उन्होंने एक बालक का और एक माता का दर्शन किया और उस बालक से और खास करके माता से ऐसे बातें की, इस प्रकार से बातें की, कुछ सुना नहीं पड़ रहा था लेकिन जिस प्रकार से वो उनका देह बोली थी उससे सभी ब्रजवासियों को जो शुद्ध भक्त थे भगवान के, उनको ये एहसास साक्षात्कार हुआ कि ये कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु बनकर आए हैं और ये यशोदा माता और कृष्ण भगवान से बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से माता से बात कर रहे हैं इससे निश्चित है कि यही कृष्ण है, बहुत दिनों बाद माता को मिलने आया, ऐसे बातें हो रही है। तो फिर महाप्रभु जी ने फिर वो नंद बाबा यशोदा माई और कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी उसको स्थापन किया। फिर बलराम जी का विग्रह बाद में प्रकट किया गया। यहाँ पर जो दर्शन है ना, वो नंद बाबा, यशोदा माई, मैया के बाजू में कृष्ण भगवान, बाबा के बाजू में बलराम जी महाराज और उनके दाई लेफ्ट साइड में मधुमंगल और सीदामा और यशोदा माई के राइट साइड में राधा रानी ससुराल में बहु बनकर खड़ी है। तो कहते हैं पूरे परिवार का दर्शन है, ग्रुप फोटो एक साथ में। यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर लीला है, महाप्रभु चैतन्य ने यहाँ पर भजन भी किया है, यहाँ पर आगे उनकी जगह है, वहाँ बैठ के भजन किया है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भी यहाँ पर, ये मंदिर जो है वल्लभाचार्य जी के बैठक है, वहाँ पर उन्होंने भी आकर भजन किया हुआ है और इस कुंड में कृष्ण भगवान की गायों ने भी पानी पिया है। तो ये गायों का भी उच्चिष्ट जल है महाप्रसाद। यहाँ पर तो खचाखच कृपा भरी हुई है हर प्रकार की, खाली स्पर्श करो और पावन हो जाओ बस। बोलो पावन सरोवर धाम की। वो जो मंदिर है उसमें पावन बिहारी का दर्शन है, राधा पावन बिहारी। उसके आगे जो दिखता है आपको गुलाबी रंग का घुमट दिख रहा है आपको, ले लो भाई ले लो, ले लिया। वो जो गुलाबी रंग का घुमट है ना, वहाँ पर शायद ये नहीं, हाँ यही है यही, इसमें सनातन गोस्वामी ने आकर भजन किया था। सनातन गोस्वामी के भजन गुटी है वो। साथ में अकिंचन कृष्णदास बाबा, उनका भी वहाँ पर भजन गुटी है। और हमारे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी वहाँ पर आए थे और कुछ दिन रुके थे और अकिंचन कृष्णदास महाराज का संग किया था उन्होंने। और अकिंचन कृष्णदास बाबा थे ना, वो 24 आवर्स कृष्ण नाम लेते थे, कभी उनको सोते हुए लोगों ने देखा ही नहीं, सोते होंगे शायद लेकिन इतना भजन करते थे लेट देर तक कि जब लोग देर तक भी जगेंगे तो भी दिखाई पड़ते थे, वो बहुत जल्दी उठे तो भी दिखाई पड़ते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद जी के संन्यास के समय भी यही कीर्तन कर रहे थे केशव गौड़िया मठ मथुरा में, और प्रभुपाद जी उनको बोल रहे थे करते रहो, और विधि करने वाले बोल रहे थे धीरे करो, और संन्यास लेने वाले बोल रहे थे जोर से करो। तो उन्होंने बताया कि ये जो संन्यास के मंत्र विधि वगैरह जो है वो इतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हरिनाम संकीर्तन है। और ये तो नाम के आचार्य थे, स्वयं अखंड नाम करते थे। तो यहाँ पर बैठ के भजन करते थे। तो एक दिन हमारे गुरु जी भी यहाँ पर रहे, तभी तो ऐसे ही थे, प्रभुपाद से शायद मिले थे उस समय। तो मंगला में जाते थे ऊपर नंदगांव के, तो अचानक महाराज जी बैठकर भजन करते, व्हाई डिडंट यू कम टू मंगला टुडे, ऐसे आवाज आई। तो महाराज जी को लगा कि यहाँ पर तो इंग्लिश बोलने वाला कोई है नहीं, बाबा तो बंगाली है, तो उन्हें यहाँ वहाँ देखा तो फिर ये भजन कर रहे हैं। फिर उन्हें बहुत भजन करना शुरू किया, दोबारा आवाज आई, व्हाई डिडंट यू कम टू मंगला आरती टुडे। फिर आंखों ने देखा तो उनको लगा ये कैसे बोल सकते हैं, तो फिर दोनों की आंख मिलन हुआ ना, तभी दोबारा पूछा व्हाई डिडंट यू कम टू मंगला आरती टुडे, तभी वो समझ गए कि ये इंग्लिश बोलते हैं। बड़े प्रेम से उन्होंने संग दिया गुरुदेव को। तो सनातन गोस्वामी ने भी भजन किया वहाँ पर, और वहीं से सनातन गोस्वामी अपने जन्मदिन के समय रूप गोस्वामी को मिलने के लिए टेर कदम गए थे, उनका जन्मदिन था उस दिन, तो यहाँ पर निवास करते थे उस समय। बहुत पवित्र जगह है ये, बहुत सुंदर जगह है। तो आप सबको बधाई है कि आप लोग यहाँ पर आए। अभी आप लोग आचमन करो प्रेम से, प्रणाम करो कुंड को, तीन बार चिट्ठा ले लो सल पे और तीन बार मुंह पे ले लो, प्रणाम करो और भक्ति की मांग करो, भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज के एकादशी के दिन आप यहाँ पर आए हो, बहुत बड़ा भाग्य है। अच्छी तरह व्रत करो, कहीं यहाँ वहाँ की बेफजूल की बातें मत करो, दिन भर भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो और भगवान के ध्यान में मग्न रहो। वही लाभ जो बाकी दिनों में होता है उससे कई गुना लाभ एकादशी के दिन में होता है। ऊपर से आप धाम में बैठे हो, ऊपर से आप यात्रा कर रहे हो, ऊपर से आप भक्तों के संग में हो, हाँ, चार चांद लग गए आपके जीवन में आज, तो आप उसका पूरा लाभ लो। हाँ, बेफजूल की बातें करके यहाँ वहाँ की क्या प्रसाद में है, साबुदाना खिचड़ी है कि वड़ा है, नाश्ते में क्या है, ये सब समय वेस्ट मत करो। जो आया वो खाओ, भगवान के ध्यान में मस्त रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।